नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रामन। राजजी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू अभिषेक, और आपको और श्रोता को ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं।
सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच जारी। चौथे दिन ऋषभ पंत और केएल राहुल ने जड़ा शतक। भारत ने थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में 4 स्वर्ण पदक सहित 27 पदक जीते। भारतीय मुक्केबाजों ने सेशेल्स मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। और ओडिशा में कलिंग स्टेडियम में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन। भारत ने इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन टी ब्रेक तक 4 विकेट के नुकसान पर 298 रन बना लिए हैं। राजी, आज चौथे दिन का खेल जारी है और भारतीय टीम काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है।
अभिषेक, है तो लगता है मजबूत, लेकिन चाय काल के बाद अगर विकेट और गिर जाते हैं तो भारत दिक्कत में भी हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड के पास वो बल्लेबाज है जो चौथे इनिंग में 400 रन भी चेस कर सकते हैं। तो अभी तक मुश्किल ठहला नहीं है। दोनों शतक जो जमाए हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत, तारीफ करनी होगी, लेकिन भारत अभी भी मुश्किलों से बाहर निकला नहीं है। जीत की ओर अगर जाना है तो करुण नायर और राहुल को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। आज शाम तक पूरा बैटिंग करना होगा और 100 रन कम से कम और जोड़ने होंगे।
तो राजी, जैसे अगर भारत 400 से ज्यादा का स्कोर करता है और अगर इंग्लैंड फिर बल्लेबाजी करने आता है, तो भारत का जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा मजबूत स्थिति में है रेदर देन इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड में देखिए इस बार जेम्स एंडरसन नहीं है, स्टूट ब्रॉड नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे हैं, और जो पिच है वो तेज गेंदबाजी को ज्यादा सपोर्ट करती है।
कर तो रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय फील्डर्स ने कल फील्डिंग किया है विश्वास नहीं भरता है। 400 रन भी शायद कम पड़ेंगे अगर कैचेस छूट जाते हैं तो। और एक बुमराह है आपके पास जो हर गेंद में विकेट लेने के लिए चलते हैं, बाकी गेंदबाज लगता है कि वो चौके कभी कभी कंसीड कर जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है अभिषेक, और मुझे लगता है कि भारत को चाय के बाद और ज्यादा मशक्कत करनी होगी। केएल राहुल बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। करुण नायर अपना पहला इनिंग जीरो बनाने के बाद अभी एक चौका मारा है उन्होंने, बड़ा ही स्ट्रेन शॉट खेलकर, जो टेस्ट मैच में अमूमन दिखता नहीं है। लेकिन इन दोनों को लंबी साझेदारी करनी होगी, तब जाके भारत की कठिनाइयां जो है वो दूर होंगी।
जैसे अगर हम बात करें कि भारत की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, जैसे क्योंकि अब ना खेल करीब डेढ़ दिन से बचा है, मुश्किल से डेढ़ दिन का खेल बचा हुआ है, और उसमें टीम है, जैसे भारतीय टीम को लेके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि काफ़ी नई टीम है, नए खिलाड़ियों से भरी हुई है, और इंग्लैंड के सामने कैसे कम्पीट करेगी, मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीम ने अपने आप को थोड़ा तो प्रूव कराया कि नहीं, हम कर सकते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन के बिना।
एक अनुभव उनका है नहीं, तीन बड़े खिलाड़ी जाने का कोई भी टीम पे उसका असर पड़ता है, लेकिन करुण नायर के पास अनुभव है, उन्हें वापस बुलाया गया है। साई सुदर्शन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है कि बहुत सीनियर खिलाड़ी जब रिटायरमेंट लेके जाते हैं तो टीम को बहुत परेशानी होगी, लेकिन बल्लेबाजों ने दिखाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लैंड के पास भी वो गेंदबाज नहीं है जो, जैसा आपने कहा, ब्रॉड और एंडरसन जैसे गेंदबाज जब उनके पास नहीं है, उनको भी मुश्किल हो ही रहा है विकेट लेने में, और मुझे लगता है कि बल्लेबाजों ने कर दिखाया है काम। अब बारी है सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा
कि वो मदद करें।
अच्छा, अगर सपोर्ट करेंगे,
दामोदर बुमराह के,
अगर बुमराह को सपोर्ट मिल जाता है, हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि 350 रन या 400 रन का लक्ष्य बड़ा मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए, लेकिन बड़ा दिलचस्प टेस्ट मैच अभी जो मोड है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज,
काफी वो मजेदार टेस्ट मैच चल रहा है चौथे दिन में प्रवेश, जैसे अमूमन हमने थोड़े दिन पहले देखा कुछ पिछले साल जैसे टेस्ट मैच हुए कि वो तीन दिन में समाप्त हो गए 3.5 खेल के दिन के खेल पे। एक बार इस पे विचार भी किया गया कि टेस्ट मैच को शायद 4 दिन का कर देना चाहिए क्योंकि 5 दिन लंबा हो जाता है, लेकिन फिर ये दोनों टीमें मैदान पे उतरती हैं और कहते हैं कि नहीं, टेस्ट मैच 5 दिन का ही खेल है।
ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है, शायद भारत का दबदबा बन जाता अगर सारे कैचेस लेते और बुमराह को बेहतर सपोर्ट मिलता। बुमराह के गेंदबाजी में ही 3 कैचेस छूटे थे। मुझे लगता है कि अगर गेंदबाजी सही हो जाए तो जो हमारे बल्लेबाजों ने अभी तक कर दिखाया है इसका पूरा अंजाम निकल के आएगा। बट जैसे आप कह रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, चारों रिजल्ट अभी संभव है और 5वें दिन का खेल बड़ा ही रोचक होगा।
भारत ने थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में 27 पदक जीते, इनमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। पेश है एक विस्तृत रिपोर्ट।
भारत का एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पदक विजेताओं में पेरिस पैरा ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नितेश कुमार, रजत पदक विजेता तुलसीमथी मुरुगेसन और कांस्य पदक विजेता मनीषा रामदास शामिल हैं। प्रतियोगिता इस महीने की 17 से 22 तारीख तक थाईलैंड में आयोजित की गई। भारत ने मिश्रित युगल SL3SU5 स्पर्धा में दबदबा कायम रखते हुए 3 पदक जीते। नितेश कुमार और तुलसीमथी मुरुगेसन ने रुथिक रघुपति और मानसी जोशी पर लगातार सेटों में जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता। चिराग बरेठा और मनदीप कौर ने कांस्य पदक जीता। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
राजीव, ये थाईलैंड में जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हुई, 27 पदक और जिनमें से 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है।
अभिषेक, बिल्कुल रहा है, लेकिन इससे बेहतर शायद रिजल्ट्स आप उनसे उम्मीद करते हैं प्लेयर्स से, क्योंकि इनको सपोर्ट की कमी नहीं है और ना ही इनके पास टैलेंट की कमी है। कभी कभी हो जाता है कि आप फाइनल पहुंच रहे हैं और फिर हार रहे हैं। अब देखिए कितने सारे सिल्वर मेडल्स मिले हैं भारतीय टीम को, अगर वो गोल्ड में कन्वर्ट होते तो और भी बेहतर हो जाता, लेकिन ये हमारे अंदर जो एक ग्रीड है एक फैन, स्पोर्ट्स फैन में और स्पोर्ट्स क्रिटिक में लालच जो है कि और ज्यादा मेडल आ जाए, ये शायद दर्शाता है कि हम चाह रहे हैं कि और मेडल आ जाए,
ये हमेशा
बट दिस इज अ गुड परफॉर्मेंस।
लेकिन पैरा गेम्स में जैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जैसे कई बार देखते हैं हम पिछली कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे खेलो इंडिया में भी अब पैरा गेम्स वगैरह होते हैं, उसकी प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, अमूमन गवर्नमेंट का इतना वो इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, तो उसमें हम देखते हैं चाहे वो पैरा बैडमिंटन हो, पैरा एथलेटिक्स हो या फिर पैरा अभी थोड़े दिन पहले पैरा वो वेट लिफ्टिंग हो, तो उसमें लगातार भारत का दमखम दिखता जा रहा है और दुनिया के सामने प्रदर्शित भी हो रहा है कि भारतीय पैरा एथलीट भी बहुत कमाल कर रहे हैं।
नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है अभिषेक, के जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है पैरा स्पोर्ट के लिए ही नहीं, हर स्पोर्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन है और आज की तारीख में कोई खिलाड़ी शिकायत नहीं कर सकता कि उन्हें मदद की कमी पड़ गई है।
भारतीय मुक्केबाजों ने सेशेल्स मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक के अलावा 3 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता और पैराडाइज एरेना में मॉरिशस से 1 पदक अधिक हासिल किया। तो मुक्केबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे अभी हमने भी बात कर रहे थे, जैसे चाहे पैरा प्लेयर्स हों या फिर अन्य कोई भी स्पोर्ट्स हों, रेदर देन क्रिकेट अब कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो उभर कर भारत में आगे आ रहे हैं और लोग उनको एंजॉय भी कर रहे हैं। जैसे अब बात होती है आर्चरी की, अब बात होती है बॉक्सिंग की, अब बात होती है वेट लिफ्टिंग की।
अभिषेक, स्पोर्ट्स कैन जो करता है और आकाशवाणी के जो खेल विभाग है, ये सारे स्पोर्ट को सपोर्ट करता है। मैं चाहता हूँ कि हमारे अखबार, हमारे रीजनल स्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ावा दें हमारे लोकल डोमेस्टिक खिलाड़ियों को। आई थिंक इट हैपन्स, ऑल इंडिया रेडियो तो करता रही है, लेकिन बाकी जो चैनल्स हैं, जो अखबार है, दे नीड टू सपोर्ट नेशनल स्पोर्ट अ लिटिल बिट मोर। और मेरा ये मानना है, पर्सनल थॉट है, कि अगर हमारा खेल और बढ़ना चाहिए, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम सबको मिलकर काम करना होगा।
इस स्पर्धा में 50 किलोग्राम वर्ग के हिमांशु शर्मा ने वॉकओवर के जरिए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि 55 किलोग्राम वर्ग के आशीष मधुसानिया ने फाइनल में 4-1 से जीत दर्ज की। गौरव चौहान ने 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग के रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की और देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। चैंपियनशिप की शुरुआत कल से हुई जो 26 जून तक जारी रहेगी। राजी, जो एक्वेटिक चैंपियनशिप है इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 78वीं है, काफी लंबे अरसे से चली आ रही है, इसमें खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा है?
नहीं, बहुत बेहतरीन रहा है और कल पहला दिन था, वहां पे रोहिंटन बेनेडिक्टन तमिलनाडु के तैराक है वो नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे।
हाँ, उन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई में 52.57 का सेकंड हासिल किया।
वीर धवल खड़े वाला रिकॉर्ड है जो 16 साल से लगा हुआ था एज नेशनल रिकॉर्ड, उसको तोड़ा है उन्होंने। और आज दो और नेशनल रिकॉर्ड टूटे हैं। दिनिधि देसुंगू जो सबसे छोटी हमारी ओलंपियन रही है, 14 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक खेलने गई थी, उनका आज नेशनल रिकॉर्ड हुआ है 200 मीटर फ्री स्टाइल में। और फिर एक और नेशनल रिकॉर्ड हुआ है शॉन गांगुली का 200 मीटर मेडले में। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है भारतीय स्विमिंग का, लेकिन और बेहतर करना होगा। अगर आप एशियन गेम्स की बात करें तो वहां पे मेडल्स हमारे कम है, वी नीड टू गेट बेटर विद स्विमिंग।
टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य रहे अनुभवी फॉरवर्ड ललित उपाध्याय ने एक दशक से भी अधिक समय तक चलते अपने शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा की। आइए जानते हैं कैसा रहा उनका सफर।
ललित उपाध्याय ने 2014 में विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में पदार्पण किया था और ओलंपिक में 2 पदक जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। वे टोक्यो 2020 ओलंपिक में इतिहास रचने वाली टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। भारत ने तब लंबे समय के बाद ओलंपिक में पदक जीता था। भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में फिर से कांस्य पदक जीता और ललित इस टीम का भी हिस्सा थे। ललित ने कल बेल्जियम के खिलाफ FIH प्रो लीग 2024-25 सत्र के यूरोपीय चरण के भारत के अंतिम मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। ललित ने कहा कि ये सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था जहां संसाधन सीमित थे लेकिन सपने असीम थे। उन्होंने कहा कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने का ये सफर चुनौतियों, विकास और अविस्मरणीय गौरव से भरा रहा। गोल करने की अद्भुत क्षमता वाले ललित ने सीनियर स्तर पर भारत के लिए 183 मैच खेले और 67 गोल किए। ललित ने ओलंपिक के अलावा 2016 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी और 2017 में एशिया कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय हॉकी में उनके योगदान के लिए ललित को 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
राजी, ललित उपाध्याय ने हॉकी को अलविदा कह दिया है और उन्होंने कहा भी ऐसे मौके पर है। कल बेल्जियम के साथ हुए मुकाबले के बाद भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो संन्यास ले रहे हैं। शायद यह काफी मन से उनके चल रहा हो और वो एक मौके की तलाश कर रहे हों।
कई खिलाड़ी सोच रहे थे शायद वो के पेरिस ओलंपिक के बाद छोड़ें हाई में, जैसे श्रीजेश ने किया था गोलकीपर ने, लेकिन ललित का सफर बड़ा अद्भुत रहा है। इज बीन वन ऑफ द बुलवॉक्स ऑफ इंडियन हॉकी और मुझे नहीं लगता है कि वो हॉकी को अलविदा कहें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हटे हैं लेकिन उनका योगदान और भी ज्यादा रहेगा।
खेल मंत्रालय ने एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता डेकल्थोन एथलीट तेजस्विन शंकर, धावक अनिमेश कुजूर और महिलाओं की 4x100 मीटर रिले टीम को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया है। जिमनास्ट परिणीति नायक को टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप TAGG में शामिल किया गया है। टॉप्स के डेवलपमेंटल ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों को ₹25,000 का मासिक भत्ता मिलेगा। तो राजी, क्या है ये टॉप स्कीम और कैसे सहायता करेगी खिलाड़ियों को?
नहीं, बहुत ऐसे खिलाड़ी थे पहले जिन्हें मदद की जरूरत पड़ी थी और सरकार का ये मानना था कि कोई ऐसे खिलाड़ी को कोई कमी होनी नहीं चाहिए, तो टॉप्स का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा है। टॉप्स और खेलो इंडिया मिलके भारतीय खेल को आगे लेके गए।
ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाना और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस वर्ष लेट्स मूव यानी आगे बढ़ें ओलंपिक दिवस की थीम है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। राज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद।
थैंक यू अभिषेक।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति।